ஓம் சாந்தி. இஸ் சம்சார மே யோகி ஆத்மாயே சப்சே பாக்யசாலி கேலாதே ஹே. யோகி ஆத்மாயே நா கேவல் பரமாத்மா கே நேனோ கே சாமனே ரேதே ஹே, லேகின் பரமாத்மா கே நேனோ மே சமாயே ரேதே ஹே. பரமாத்மா கே நயனோ கே பல்கோ மே சதா பல்தே ரேதே ஹே. இஸ்லிய ஹம் சபி கி ரேஸ் யோகாபியாஸ் மே ஹி ஹே. இஸ் யூனிவர்சிட்டி கே ஜோ டாப்பர்ஸ் ஹோங்கே வோ யோகி ஆத்மாயே ஹோங்கி. இஸ்லிய பாபா கே பாஸ் ஆனே கே பாத் முஸே பஹத் அச்சி யோக கி ஸ்ரேஷ்ட ஸ்திதி பனானா ஹே, யே ஹமாரா லக்ஷ்ய ஹோ. க்யோங்கி பிரம்மா பாபா கி யோக கி ஸ்ரேஷ்ட ஸ்திதி ஹமாரே சாமனே மதுபன் மே சாந்தி ஸ்தம்ப கே ரூப் மே दिखाई देती हैं. शांति स्तंभ जैसी स्थिति अर्थात बहुत ऊंची स्थिति और अचल अडोल स्थिति, तीन सी स्थिति बनाने के लिए हमें फॉलो फादर करना होगा. और वर्तमान समय बाबा की लहर है, अनुभव की अथॉरिटी बनते चलो, क्योंकि जिनके पास अनुभव की अथॉरिटी होगी वही आगे आने वाले हलचल के समय अपनी स्थिति को अचल बनाने में सफल होंगे. और हलचल के समय भी अनेक आत्माओं को मदद करने की क्षमता उनके पास होगी. इसलिए मुझ आत्मा के पास अलौकिक अनुभव की पूंजी सदा बढ़ती रहे, यही लक्ष्य सदा हमारा रहे. योगाभ्यास में सदा आगे बढ़ने के लिए, योगाभ्यास में बहुत सुंदर अनुभव करने के लिए सबसे पहली बात है अनुभव. अर्थात जब तक स्वयं को अति सूक्ष्म अणु नहीं समझते हैं, बिंदु नहीं समझते हैं, तब तक हमें इस ज्ञान मार्ग में कोई भी अनुभव नहीं होता है. और जैसे स्वयं को अणु समझने लगते हैं, बिंदु समझने लगते हैं, तो अलौकिक अनुभव की खान हमें मिल जाती है. दूसरी बात, अलौकिक अनुभव करने के लिए आवश्यकता है मन और बुद्धि में जो सूक्ष्म अंतर हैं, उस सूक्ष्म अंतर को समझने की. तो कौन सी शक्ति बुद्धि है, कौन सी शक्ति मन है, ये बात हमारे सामने क्लियर होना जरूरी है, तभी हम अलौकिक अनुभव कर सकते हैं. अगर मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, आपने मधुबन में शांति स्तंभ देखा है, तो तुरंत आपको शांति स्तंभ की तस्वीर दिखाई देगी, आपके सामने आएगी. वो जो देखने वाली शक्ति है वो है हमारा बुद्धि रूपी नेत्र. और दूसरा प्रश्न पूछता हूं कि शांति स्तंभ कैसा है, तो आप शांति स्तंभ के बारे में कुछ एक बातें बताना शुरू करेंगे कि शांति स्तंभ ब्रह्मा बाबा की स्थिति का यादगार है। शांति स्तंभ में पवित्रता का स्तंभ, शक्ति का स्तंभ, ज्ञान का स्तंभ, ये सब बातें स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो ये सोचने की शक्ति मन है और देखने वाली शक्ति बुद्धि है। ये एकांत में बैठकर हमें अनुभव करना जरूरी है, क्योंकि आत्मा की भी अनुभूति करते हैं तो सबसे पहले हम आत्मा को देखने का अभ्यास करते हैं कि मैं एक अजीब सितारा हूं और गजब का सितारा हूं। अजीब सितारा क्यों हूं? क्योंकि आसमान के सितारे तो इन आंखों से दिखाई देते हैं, लेकिन ये जो आत्मा रूपी सितारा है वो उसको देखने के लिए दिव्य नेत्र, दिव्य चक्षु की आवश्यकता होती है। और गजब का सितारा क्यों हूं? क्योंकि छोटे से सितारे में 63 जन्मों का 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, वो कभी भी मिटता नहीं है, कभी भी घिसता नहीं है। तो इन दोनों शक्तियों को जानना बहुत जरूरी है, उसके बाद हम इसका प्रयोग करना शुरू करते हैं। तो योग के संबंधित कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हों में हमें समय प्रति समय बहुत सुंदर गहन अनुभव करते रहना जरूरी है। उसमें मुख्य 6 बातें हैं। पहली बात है, योगाभ्यास को बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ने के लिए परम धाम का अनुभव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाबा कहते हैं यथार्थ याद करने के लिए परम धाम रूपी घर को याद करो और घर में मुझे याद करो। इसलिए परम धाम का ज्ञान होना ही पर्याप्त नहीं है, लेकिन परम धाम में हमें बुद्धि के द्वारा जाना जरूरी है। और परम धाम का जो वातावरण है वो हमें स्पष्ट अनुभव करते रहना जरूरी है। परम धाम इन 5 तत्वों से परे 6ठा तत्व है, जहां हमेशा सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश ही प्रकाश रहता है और शांति ही शांति रहती है। ऐसी अनुभूति हमें वहां जाकर अच्छी तरह से करना है। लेकिन इसमें भी अगर आप नए हैं तो 100% जो भान हमारा होता है उसमें से 10 या 20% भान से आप परम धाम के वातावरण को अनुभव कर सकते हैं। तो उसको हमें धीरे धीरे बढ़ाते जाना है, 10 से 20%, 30%, 40%, 50%, 100% भान हमारा वहां परम धाम में हो, ये हमारा लक्ष्य है। और जैसे जैसे परम धाम का अनुभव हमारा बढ़ता जाता है, हमारा जो असली घर है उसका अनुभव बढ़ता जाता है, तो ये पुरानी दुनिया से हमारी बुद्धि उठने लगती है, उपराम होने लगती है। इसलिए परम धाम निवासी बनने का अनुभव हमें बार बार बढ़ाते जाना है। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, किसी भी बात का जब हम अनुभव करते हैं तो उसमें 3 स्टेजेस आती हैं। पहली स्टेज है, उसमें जैसे जैसे हमारे अनुभव बढ़ते हैं उसमें हमारी मास्टरी आती है, उसमें हमारा कमांड आता है, अथॉरिटी आती है। दूसरी बात, उसमें हमारा परफेक्शन होता है। और तीसरी बात, उसको हम एंजॉय करने लगते हैं। तो हर प्रकार के अनुभव में इन 3 बातों की स्टेजेस हमें अनुभव होती हैं। तो योगाभ्यास के कनेक्शन में दूसरी बात है, सूक्ष्म वतन वासी बनने का अनुभव हमें बार बार बढ़ाते जाना है। वर्तमान समय हमारा घर जो है वो सूक्ष्म वतन है, जहाँ हमारे ब्रह्मा बाप रहते हैं वो हमारा घर कहलाता है। तो सूक्ष्म वतन का ज्ञान होना ही पर्याप्त नहीं है, लेकिन सूक्ष्म वतन में जाना, उसका वातावरण वाइब्रेशन अनुभव करना और उस घर पर अपना अधिकार बढ़ाना, ये बहुत जरूरी है। तो सूक्ष्म वतन बाबा ने दो बातों के लिए रचा हुआ है। शिव बाबा निराकार हैं और हम साकारी रूप में बच्चे हैं, तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के आकारी स्वरूप में सूक्ष्म वतन में आते हैं और हम साकारी रूप से अपने आकारी रूप में जाते हैं और बाबा से मधुर मिलन मनाते हैं। और दूसरा लक्ष्य है सूक्ष्म वतन का, बाबा के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति करने के लिए बाबा ने सूक्ष्म वतन रचा हुआ है। इसलिए सूक्ष्म वतन में बार बार हमें जाना है और बहुत सुंदर उसकी अनुभूति बढ़ाते जाना है और उस घर पर अपना अधिकार भी बढ़ाते जाना है। तीसरी बात है, योग की बहुत अच्छी स्थिति बनाना चाहते हैं तो आत्मा का अनुभव हमें बढ़ाते रहना जरूरी है। जब तक आत्मा का अनुभव हमारा नहीं बढ़ता है, तब तक बाबा की याद हमें सहज आने नहीं लगती है। यही पहला पाठ है, यही अंतिम पाठ है और यही सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। इस बात को हमें रियलाइज करना जरूरी है, क्योंकि हम थोड़ा सा पुराने हो जाते हैं ज्ञान मार्ग में तो हमें थोड़ा सूक्ष्म अहंकार आता है। ये पहला पाठ तो नयों के लिए है, मैं तो पुराना बच्चा हूँ बाबा का, इसलिए जितना अटेंशन उस बात पर हमें देना चाहिए वो हम नहीं देते हैं। उसके कारण जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वैसे हमारी स्थिति हिलने डुलने लगती है। इसलिए एकांत में हमें बैठना है, बुद्धि रूपी नेत्र से स्वयं को प्रकृति के बीच में चमकता हुआ सितारा अनुभव करना है और आत्मा के जो सात गुण हैं, उन सातों गुणों का एक के बाद एक बहुत सुंदर अनुभव हमें करते जाना है। तो धीरे धीरे आत्मा का जो प्रकाश है, आत्मा का जो आभा मंडल है, वो धीरे धीरे विकसित होता जाता है। तो हमारा लक्ष्य केवल आत्मा का अनुभव नहीं करना है, लेकिन संपूर्ण आत्म अभिमानी स्थिति की अनुभूति करना, ये हमारा लक्ष्य है। आत्मा का 100% भान हो और देह का 0% भान हो, ये हमारा लक्ष्य है। तो जैसे जैसे हमारे इसमें अनुभव बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आत्म अभिमानी स्थिति परिपक्व बनती जाती है। उसके बाद चौथी बात है, योगाभ्यास को अच्छी तरह से आगे बढ़ाने के लिए परम धाम में परमात्म अभिमानी स्थिति की अनुभूति करना, अर्थात परम धाम में बाबा के स्वरूप को स्पष्ट देखना और बहुत अच्छी तरह से समीपता से अनुभव करना। बाबा के पास हम जब जाते हैं तो जाने का भी परसेंटेज हमें धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। मान लीजिए आप 2-3 साल के बच्चे हैं बाबा के, तो 100% जो भान है उसमें से 30-40% भान से आप परम धाम में बैठ सकते हैं। तो अभी और इसमें अनुभव गहराई से बढ़ाते जाना है, 50%, 60%, 70%, 80%, 100% कॉन्शियस से परम धाम में बैठना, यह हमारा लक्ष्य है। फुल कॉन्शियस और फुल टाइम माना निरंतर, ये है कर्मातीत स्थिति की निशानी। जब ब्रह्मा बाबा की कर्मातीत स्थिति थी, उन दिनों में बाबा से बच्चे मिलने जाते थे झोपड़ी में, तो बाबा की आंखों से स्पष्ट दिखाई देता था कि बाबा केवल तन से यहाँ बैठे हैं, लेकिन मन से बाबा ने पूर्णतया अपने को परम धाम में शिव बाबा के पास ट्रांसफर कर दिया है। तो योग की गहराई बढ़ाना अर्थात परम धाम में बाबा के पास जास्ती से जास्ती भान से बैठना, तो इसको कहेंगे योगाभ्यास की क्वालिटी को बढ़ाना। क्योंकि बाबा की कंपनी हमें जैसी जैसी अनुभव होती है, तो बाबा की कंपनी में परम आनंद का अनुभव हमें होता है, और साथ साथ जो ज्ञान सूर्य बाबा हैं, शक्तियों के सागर परमात्मा हैं, उनसे शक्तियों की अनुभूति भी हमें होने लगती है। तो बाबा का यथार्थ स्वरूप हमें अच्छी तरह से देखना है और अनुभव करना है। यथार्थ याद किसको कहते हैं? परम धाम में मैं आत्मा ज्योति बिंदु ज्ञान सूर्य बाबा के सामने बैठी हूँ, और मेरा बुद्धि रूपी नेत्र बाबा पर एकाग्र है, और मन मेरा मन मना भव का मंत्र का जाप कर रहा है, इसको यथार्थ याद कहते हैं। लेकिन बाबा के यथार्थ स्वरूप को समझना बहुत जरूरी है। जैसे अर्जुन ने साक्षात्कार होते समय वर्णन किया कि परमात्मा का स्वरूप हजारों सूर्य से तेजो में है, इसका वास्तविक अर्थ ये है कि परमात्मा का स्वरूप बहुत ही शक्तिशाली है, वो आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर हैं, उनके पास ये क्षमता है इस सूर्य से कई गुना शक्तियों को प्रवाहित करने की क्षमता तीनों लोगों में परमात्मा के पास है। ऐसा शक्तिशाली स्वरूप हमें अनुभव करना है। और बाबा का जो नाम है तीन शब्दों में गाया जाता है, सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात वो सत्यता के सागर हैं, सारे संसार की आत्माओं को सत्यता की शक्ति प्रदान करते हैं, और सत्यता की शक्ति के द्वारा इस धरा पर सतयुग लाते हैं। तो सत्यम शिवम अर्थात कल्याणकारी, वो सारे संसार के सदा के कल्याणकारी है, बेहद के कल्याणकारी है, निरंतर कल्याणकारी है, अर्थात वो कल्याण के सागर हैं। और सुंदरम अर्थात उनके जैसा सुंदर तीनों जहां में कोई भी नहीं है, सारी संसार की आत्माओं को सुंदर बनाने का ठेका बाबा ने लिया है। आप सोच सकते हैं कितना सुंदर बाबा का स्वरूप होगा, इसलिए वो सुंदरता के सागर हैं, ऐसा कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो ऐसा सुंदर स्वरूप हमें बाबा का परम धाम में देखना है और बहुत अच्छी तरह से अनुभव भी करना है, ताकि दिन प्रतिदिन योगाभ्यास की गहराई हमारी बढ़ती रहे। और बाद में पांचवी बात है, योगाभ्यास को अच्छी तरह से आगे बढ़ाने के लिए हमें फरिश्ता स्थिति की अनुभूति को बढ़ाते रहना बहुत जरूरी है। फरिश्ता जो होता है उसकी दो मुख्य निशानियां होती हैं। फरिश्ता अर्थात फर्श से, फर्श वासियों से कोई उसका रिश्ता नहीं होता है, उसके सभी रिश्ते अर्शवासी परमात्मा के साथ होते हैं। ये पहली निशानी उसकी होती है। और दूसरी निशानी है मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की ड्रेस धारण की है। तो जैसा जैसा ये फरिश्ता स्थिति का अनुभव बढ़ता जाता है तो दिव्य प्रकाश कुंज की जो काया है वो अनुभव करने का परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ता जाता है और स्थूल शरीर का भान धीरे धीरे घटने लगता है। तो संपूर्ण फरिश्ता अर्थात मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने 100% दिव्य प्रकाश पुंज की ड्रेस धारण कर ली है और 0% देह का भान है। इसको कहते हैं संपूर्ण फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करना। तो जैसे जैसा इसमें हमारा अनुभव बढ़ता जाता है वैसे वैसे फरिश्ता स्थिति हमारी निखरने लगती जाती है। तो कर्म क्षेत्र पर जब हम रहते हैं तो हमें फरिश्ता स्थिति का अनुभव बढ़ाते जाना है और जब हम बैठक का योग करते हैं उस समय शक्तिशाली योगाभ्यास की अनुभूति को बढ़ाते जाना है। तो फरिश्ता स्थिति जैसी जैसी हमारी निखरती जाती है तो फरिश्ता स्थिति के द्वारा हम बेहद की सेवा भी करने की क्षमता को प्राप्त करते जाते हैं। इसके बाद छठवीं बात है बाबा के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करते रहना। बाबा कहते हैं जो भक्ति मार्ग में आप गाते थे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, वो वायदा मैं निभाने आया हूं। तो संगम युग में बाबा कहते हैं मैं 24 घंटे आपको कंपनी देने के लिए तैयार हूं, जितना चाहो मुझे यूज करो, मेरी कंपनी का अनुभव करो। यू कैन यूज मी और यू कैन लूज मी, वो आपके हाथ में है। मैं आपकी सेवा करने के लिए 24 घंटे तैयार हूं। इसलिए बिंदु समझकर बिंदु बाप को याद करना ये थोड़ा कभी कभी हमें बोर होने लगता है, इसलिए सारे दिन भर में सवेरे से लेकर रात्रि तक हमें विभिन्न संबंधों की अनुभूति करते जाना है। उसमें भी विशेष 11 प्रकार के संबंधों की अनुभूति हमें सारे दिन भर में करते रहना है। सबसे पहले अमृत वेले जब हम उठते हैं बाबा से गुड मॉर्निंग करते हैं, उसके बाद हमें बाप का संबंध अनुभव करना है। आज्ञाकारी वफादार फरमानदार बच्चा बनकर बाबा की गोदी में सबसे पहले हमें पाप का संबंध अनुभव करना है, उसके बाद जब हम सेंटर पर आते हैं तो टीचर का संबंध अनुभव करना है, बाबा के जो मुरली हैं वो मुरलीधर बाप की याद में सुनने का आनंद लेना है और आत्मा को ज्ञान रत्नों से भरपूर करना है। उसके बाद तीसरा अनुभव सद्गुरु का है, वो संबंध अनुभव करने के लिए जब भी हम सेंटर से बाहर जाते हैं या घर से बाहर सेवा के लिए जाते हैं तो सद्गुरु की दृष्टि से हमें अनेक वरदान प्राप्त करना है और उनका वरद हस्त हमें अपने माथे पर अनुभव करना है, और उन्होंने जो दिया हुआ मंत्र है मनमना भाव वो सारे दिन भर में उसका जाप करते रहना है, उनकी ही छत्र छाया में सारे दिन चलते रहना है। चौथा संबंध, खुदा मेरा दोस्त है, मैंने खुदा के साथ जो दोस्ती की है पवित्रता के प्रॉमिस के आधार पर की है, इसलिए मुझे ये प्रॉमिस उनके साथ अच्छी तरह से निभाना है, उसमें बहुत सच्चाई सफाई मुझे रखनी है। तो दोस्त के साथ चलना है, खाना है, बैठना है, वतन में जो हमें दिल का हाल समाचार उनके साथ लेन देन करना है वो करना है, तो सारा दिन हम दोस्त का अनुभव कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से, दिल के समाचार की लेन देन करके स्वयं को हल्का अनुभव कर सकते हैं। फिर पांचवा अनुभव है, बाबा मेरा बच्चा है, कुमार है तो भी बाबा को हमें बच्चा बनाना है, क्योंकि बच्चे को जो हम अधिकार देते हैं, वर्षा देते हैं, वो हमें वर्षा जरूर देना है, क्योंकि ये बच्चा हमारा हमें अंत तक घर तक वापस ले जाएगा, ये हमारा पूरा विश्वास है, इसलिए बाबा को बच्चा भी हमें बनाना है। और बाद में छठा संबंध है, बाबा मेरी माँ है, क्योंकि हम देखते हैं लौकिक माँ से थोड़ा सा हमारा लगाव जरूर होता है, जिसने हमें जन्म दिया है, लालन किया है, पालन किया है, उसके साथ थोड़ा सा मोह जरूर होता है, उसको हटाने के लिए बाबा को हमें माँ के रूप में अनुभव करना है, माँ की ममता बहुत अच्छी तरह से अनुभव करना है। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में मेरी लौकिक माँ है और उनकी गोदी में मैं बच्चा बच्ची बनकर बहुत अच्छी तरह से पलती हूँ, चलता हूँ, ऐसा सुंदर अनुभव हमें करना है। उसके बाद सातवां संबंध है, बाबा मेरा साजन है, क्योंकि कुमारों को विशेष ये अनुभव करना जरूरी है संबंध, क्योंकि थोड़ा सा हमारे में अहंकार होता है मैं मेल हूँ, लेकिन मैं आत्मा बाबा जो निराकार शिव है वो मेरा साजन है और मैं आत्मा उनकी सजनी हूँ, ये संबंध की अनुभूति हमें जरूर अच्छी तरह से अनुभव करते रहना है। उसकी अनुभूति हम क्लास के आखिरी थोड़े समय के लिए हम जरूर आपको कराएंगे। फिर आठवां संबंध है, बाबा मेरा रक्षक है, हर कोई चाहता है मेरे सिर पर किसी का हाथ हो, मेरा बैकबोन कोई हो, इसलिए सर्वशक्तिवान बाप मेरा रक्षक है, ऐसा अनुभव करना है। नौवां संबंध जो है सर्जन के रूप में करना है, कोई पुरानी बीमारी हमारी होती है ऐसा कड़ा संस्कार होता है, बाबा को आह्वान करो, बाबा ये पुरानी बीमारी मुझे नहीं चाहिए, इसकी सर्जरी आप कर लो और मुझे फ्री कर लो, तो बाबा को सरेंडर करके उसकी सर्जरी भी करा लो। और दसवां संबंध है, बाबा मेरा गाइड है, जब भी आप दुविधा में होते हैं तुरंत बाबा को बुलाइए, बाबा आओ मुझे गाइडेंस चाहिए, गाइड करो, बाबा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को अच्छी तरह से जानने वाले हैं, और निस्वार्थ गाइडेंस देने वाले हैं, इसलिए बाबा से गाइडेंस लेना है। और ग्यारहवा जो संबंध है वो है धर्मराज का। हमें किसी एक का डर होना बहुत जरूरी है, तो धर्मराज के रूप में बाप का डर होना बहुत जरूरी है, ताकि हम छोटी मोटी गलती न करें, छोटा मोटा विक्रम न करें, उससे बचें। तो कहने का मतलब है, सारे दिन भर में विभिन्न संबंधों की अनुभूति करते रहना है और योगाभ्यास को बढ़ाते जाना है। बुद्धि रूपी तार हमारी बाबा के साथ जुटा कर रखना है। जो 8 घंटा बाबा योगाभ्यास के लिए कहते हैं, वो सहज रीति से हम इन विधि से कर सकते हैं। तो ऐसा सर्व संबंधों का अनुभव बहुत जरूरी है। और दूसरा इसका कारण, इसके पीछे दूसरा राज ये है कि 84 जन्मों में हमें अलग अलग रोल मिलते हैं। तो जो भी हम आत्मा को रोल मिलता है, वो रोल हम आराम से अच्छी तरह से बजा सकें, वो संस्कार हमें अभी भरना है आत्मा में। कैसे भरेंगे? परमात्मा के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति करते ही ऐसी अनुभूति हम कर सकते हैं, वो संस्कार आत्मा में भर सकते हैं। तो इस तरह से इन 6 बातों पर अच्छी तरह से अनुभव करते जाते हैं, तो हमारी स्थिति परिपक्व होती जाती है, योग की स्थिति अचल अडोल होती है। बाबा ने कुमारों का गायन अंगद के रूप में बताया है। अंगद जो है, उसका बुद्धि रूपी पैर रावण हिला नहीं सका, उसको अंगद कहते हैं। तो अंग द, जिसने अंग को भुला दिया है, शरीर के भान को भुला दिया है, आत्मा के भान में स्वयं को टिका दिया है, उसका बुद्धि रूपी पैर कोई भी दुनिया की शक्ति रावण नहीं हिला सकता है। इसलिए ऐसी स्थिति हमें बनाना है। तो जैसे जैसे हमारी स्थिति परिपक्व होती जाती है, उसके बाद हम मनसा सेवा करने की क्षमता अपने पास अनुभव करने लगते हैं। तो दूसरा एरिया है, मनसा सेवा करने में भी हमें अनुभव बढ़ाते जाना है। क्योंकि हम देखते हैं हमारी दादियां, हमारे जो वरिष्ठ भाई बहने हैं, बहुत अच्छी तरह से मनसा सेवा करती हैं, करते हैं, और हम जब करते हैं तो हमारे मन में थोड़ा सा डाउट रहता है, मैं मनसा सेवा करता तो हूँ, लेकिन पता नहीं इसमें मुझे सफलता मिलेगी या नहीं, ये थोड़ा सा डाउट होता है। तो ये डाउट खत्म करने के लिए मनसा सेवा में भी हमें अनुभवी बनते जाना है। मनसा सेवा करने का साधन भी बहुत शक्तिशाली बनाना है, और मनसा सेवा के क्षेत्र में बहुत सुंदर अनुभव को बढ़ाते जाना है। अभी मैं अनुभवी आत्मा बना हूं या नहीं, कैसे समझेंगे भाई? अनुभव मेरे पास बहुत अच्छी तरह से है, इसकी 5 निशानियां हैं। पहली निशानी है, अनुभवी आत्मा के चेहरे पर हमेशा नारायणी नशा छाया हुआ रहता है, संपन्नता और संतुष्टता ये उनके चेहरे पर हर कोई पढ़ लेता है, ये पहली निशानी उसकी होती है। दूसरी निशानी ये है, अनुभवी आत्मा का जीवन अलौकिक अनुभव के आधार पर रोचक होता है, रोमांचित होता जाता है। क्योंकि हम देखते हैं बाबा के पास कुछ बच्चे आते हैं, 2-4 साल चलते हैं, बाद में वो पुरानी दुनिया में चले जाते हैं, उसका कारण है अलौकिक अनुभव की कमी। लेकिन जिन आत्माओं के पास अलौकिक अनुभव की पूंजी होती है, वो अपने जीवन को इंटरेस्टिंग और बहुत रोचक और रोमांचित बनाते जाते हैं, उमंग उत्साह को बढ़ाते जाते हैं और अपने संपूर्णता کی منزل کی اور آگے بڑھتے ہی جاتے ہیں. تیسری اس کی نشانی ہے انبھوی آتما ہمیشہ آتمونتی میں مگن رہتا ہے. اپنی گھوٹ تو نشہ چڑھے یہ اکتی اس کے جیون میں پریکٹیکل دکھائی دیتی ہیں. اس لیے ایسی انبھوی آتما کے سنگ میں ہر کوئی رہنا چاہتا ہے, ہر کوئی اس کے ستھتی سے لابھ لینا چاہتا ہے. اور چوتھی نشانی ہے ایسی انبھوی آتما دعاؤں کے پاتر بنتی جاتی ہیں. جب وہ اپنے الوکک انبھو دوسروں کے ساتھ شیئر کرتا ہے تو دوسروں کو ایسے الوکک انبھو کرنے کے لیے آتم وشواس اور ساہس اس کا جاگرت ہوتا ہے اور ان کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں. جب میں گیان میں آیا 72 میں, اس سمے میری عمر 22 سال کی تھی, میں سوچ سنتا تھا کہ آجیون برہمچریہ پالن کرنا ہے, تو سوچتا تھا کیسے سمبھو ہوگا. لیکن 73 میں میں بابا سے ملنے آیا مدھوبن میں, تو ایک بھائی کا چہرہ چمکتا ہوا دیکھا, اس کو میں نے بلا کر اس کا انبھو پوچھا پوترتا کے بارے میں. تو جب اس نے مجھے انبھو سنایا تو مجھے آتم وشواس جاگرت ہو گیا کہ یہ آتما اگر پوترتا کو اپنا سکتی ہے تو میں بھی اپنا سکتا ہوں, اور میرے دل سے اس کے پرتی دعا نکلی. تو ایسے انبھوی آتما دعاؤں کا پاتر بنتا جاتا ہے. اور پانچویں نشانی ہے انبھو کی پنجی سفلتا کی کنجی. سفلتا کی کنجی ارتھات چابی. انبھوی آتما انبھو کے آدھار پر ہمیشہ نروگن ریتی سے اپنی منزل کی اور آگے ہی آگے بڑھتا جاتا ہے. وہ دشمن سے کبھی بھی دھوکہ نہیں کھاتا ہے. اگر کوئی غلطی ہوتی ہے وہ غلطی سے بھی کچھ لیسن سیکھتا ہے اور انبھو اس سے کچھ لیتا ہے اور آگے بڑھتا جاتا ہے. ایسا انبھوی آتما مایا کی اندھی گلیوں میں بھٹکتا نہیں ہے اور اپنے سمے اور شکتی کے امولیہ خزانے کو برباد نہیں کرتا ہے. تو یہ چار پانچ نشانیاں انبھوی آتما کی ہیں. اس لیے ہمیں چیک کرنا ہے کہاں تک میں آتما انبھوی بنا ہوں اور کہاں تک مجھے بننا ہے. اس لیے دنیا والے کہتے ہیں جہاں نہ پہنچے روی وہاں پہنچے کبھی, اور جہاں نہ پہنچے کبھی وہاں پہنچے انبھوی. انبھوی کہاں پہنچتا ہے؟ ساتویں آسمان میں پہنچتا ہے, پرم دھام میں پہنچتا ہے. اس لیے ابھی ہم بہت سندر ساجن میرا بابا ہے میں آتما اس کی سجنی ہوں یہ سمبند کا انبھو کرنے جا رہے ہیں. سبھی تھوڑا الرٹ ہو کے بیٹھیں گے. چند گھڑیوں کے لیے بہت سندر انبھوتی میں ہم کھو جائیں گے. اوم شانتی. اس دیہ روپی محل میں میں نراکار جوتی بندو آتما سجنی اپنے سلونے شیو ساجن سے ملنے کے لیے بیتاب ہوں, بے چین ہوں, تڑپ رہی ہوں. میں آتما روپی سجنی نے بہت سندر آتما کا تلک, وجے کا تلک اور پویترتا کا تاج دھارن کیا ہے. میں سجی سجائی آتما روپی سجنی بدھی روپی ڈولی میں بیٹھ کر मैं अपने सलोने शिव साजन से मिलने के लिए परम धाम रूपी पीस पैलेस की ओर ओढ़ती हुई जा रही हूं। इस विश्व के ग्लोब से पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार फरिश्तों की दुनिया से भी पार परम धाम रूपी पीस पैलेस की ओर उड़ती हुई जा रही हूं, जा रही हूं। आह, परम धाम रूपी पीस पैलेस में पहुंच गई हूं। कितना सुंदर है यह पीस पैलेस परम धाम, चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश प्रकाश है, शांति शांति है। आह, मेरे सलोने शिव साजन सत्यम शिवम सुंदरम, सलोने शिव साजन मुझ आत्मा रूपी सजनी के समक्ष विराजमान है। मैं अपने सलोने शिव साजन को अपने बुद्धि रूपी नेत्र से देख रही हूं। उनकी सुंदरता का भरपूर आनंद ले रही हूं। इनकी सुंदर छवि को जी भर के देख रही हूं। मेरे दिल में सलोने शिव साजन के प्यार का झरना निरंतर बह रहा है। मैं आत्मा रूपी सजनी अपने शिव साजन के समीप जा रही हूँ, जा रही हूँ। अति समीप पहुंच गई हूं और उनकी लाइट और माइट रूपी बाहों में समा गई हूं। प्यार के सागर में डूब चुकी हूं। शिव साजन के प्यार में समा चुकी हूँ, लीन हो चुकी हूँ, अपने अस्तित्व को भूल चुकी हूँ। शिव मैं बन चुकी हूँ, कंबाइंड हो चुकी हूँ। मुझे कुछ पता नहीं मैं कहाँ हूँ। प्यार के सागर के तले में डूब चुकी हूँ। शिव मैं बन चुके हूं। मेरे सलोने शिव साजन एक तरफ प्यार के सागर हैं, तो दूसरे तरफ शक्तियों के अथाह सागर भी हैं। सलोने शिव साजन ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर हैं। लवफुल स्थिति पावरफुल स्थिति में परिवर्तन हो रही है। ज्ञान सूर्य परमात्मा से बेहद शक्तिशाली किरणों की बरसात निरंतर मुझ आत्म सजनी पर हो रही है। शक्तिशाली किरणों की वर्षा निरंतर मुझ सजनी पर हो रही है। मैं आत्मा रूपी सजनी अथाह शक्तियां प्रचंड शक्तियां अनंत शक्तियां अद्भुत शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं, ग्रहण करती ही जा रही हूं। योग की प्रखर अग्नि में मेरे पूर्व जन्मों के पाप पल भर में भस्म हो रहे हैं। मैं आत्मा रूपी सजनी स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूँ, शक्तियों से भरपूर अनुभव कर रही हूँ। सचमुच मेरे जीवन के सबसे खुशी के पल है यह, सुनहरे पल है यह जो मैं आत्मा रूपी सजनी अपने सलोने शिव साजन के कंपनी में परम आनंद की अनुभूति कर रही हूँ, परम सुख की अनुभूति कर रही हूँ। वाह रे मैं, वाह मेरा भाग्य, सारे संसार के जो मालिक है वो मेरे साजन बन चुके हैं। मेरे सलोने शिव साजन मुझ सजनी को दिव्य गुणों के आभूषणों से सजा रहे हैं। हे मेरे सलोने शिव साजन, मैंने आपसे अथाह शक्तियां प्राप्त कर ली है, लेकिन मुझ आत्मा रूपी सजने की एक और छोटी सी आस है कि मेरे दिल रूपी मंदिर में मेरे सलोने शिव साजन के प्यार की अखंड ज्योत सदा जलती रहे। मेरे दिल रूपी मंदिर में मेरे सलोने शिव साजन के प्यार की अखंड जो सदा जलती रहे, ताकि संगम की हर घड़ी में अपने शिव साजन के महिमा के गीत गाती रहूं, गुनगुनाती रहूं, उनके ही संग में उनके ही रंग में रंगती रहूं। सचमुच मैं कितनी न खुश नसीब आत्मा रूपी सजनी हूं। मेरे सलोने शिव साजन मेरे बेस्ट कंपेनियन है, उनकी कंपनी का मैं सुखद अनुभव कर रही हूँ। मैं आत्मा रूपी सजनी शक्तियों से भरपूर होकर दिव्य गुणों से सजकर निराकारी परम धाम रूपी पीस पैलेस से वापिस इस साकारी दुनिया की ओर आ रही हूँ और पुनः इस शरीर रूपी महल में मैं आत्मा सजनी भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर सोमान के सिंहासन पर विराजमान हो चुकी हूँ। मैं शक्ति शक्तिशाली आत्मा स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति कर रही हूँ। मैं आत्मा कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण और शासन करके स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति कर रही हूँ। जैसे मेरे सलोने शिव साजन निराकार हैं, वैसे मैं आत्मा सुजनी विनिराकार ज्योति बिंदु हूँ। मेरे मस्तक पर मस्तक मणि चमक रही है और मुझ मस्तक मणि से अष्ट शक्तियों की चमक चारों ओर फैल रही है। मुझ आत्मा के चारों ओर सुंदर आभा मंडल अनुभव हो रहा है। ओम शांति शांति शांति।